12 श्री कृष्ण चले गए मेरे जीवन का राज चषक अपने चरणों से लुढ़काकर, उसमें भरे हुए मेरे भवितव्य के दुग्ध रस को इधर उधर बहने के लिए छोड़कर। समाधान का एक यही था कि वह राज चषक उनके पुण्य पावन चरणों से लुढ़काया गया था। अपना जन्म वृत्त मुझे उनसे ज्ञात हुआ था। मेरे जीवन का रहस्य भेद कर वे उसी सहज भाव से रथ में चले गए जिस सहज भाव से वे गोकुल में गोपालों के साथ गाय चराने के लिए गोवर्धन पर्वत की घाटी में चले जाते होंगे। परंतु मैं पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया था। एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में वे आए थे। उनके प्रलोभनों की बलि नहीं बनना है यह सोचकर मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी। परंतु मैं भी तो एक मनुष्य ही था। अपने जीवन की इतनी घोर प्रवंचना किसे शांत रहने देगी? क्या अपराध था मेरा कि गायों के झुंड में मार्गभ्रष्ट जंगली व्याघ्र की भांति जीवन भर पलता रहा? मैं सूर्यपुत्र था, फिर भी लक्ष लक्ष नगरजनों के हृदय विदीर्ण कर देने वाले धिक्कार मुझे जीवन भर सिर झुकाकर सहन करने पड़े थे। जलती हुई मशाल जैसा मन लेकर जीवन भर अंधाधुंध दौड़ते हुए जीना पड़ा था। हिमालय में जन्म लेने वाली गंगा का मधुर जल जैसे सागर से मिलते ही क्षारमय हो जाता है, वैसा ही क्या मेरा जीवन नहीं था? अब उद्गम स्थल धवल हिमालय का क्या उपयोग था? मैं दिव्य कुल का हूँ, मेरी परंपरा श्रेष्ठ है, मेरे पूर्वज पराक्रमी थे, मान्यवर थे। इन विचारों या सत्यों से मुझे अब क्या प्राप्त होने वाला था? हस्तिनापुर के राज चौक में खड़ा होकर गला फाड़ फाड़ कर भी यदि आज मैं चिल्लाऊं कि मैं भी क्षत्रिय ही हूँ, मैं हीन नहीं हूँ, तुच्छ नहीं हूँ, क्षुद्र नहीं हूँ, तो क्या कोई उस पर विश्वास करेगा? मेरे जीवन के इस कूढ़न के लिए उत्तरदायी कौन है? अंतरंग में घनीभूत होने वाले विफल जीवन की यह असह्य आग किसको दिखाऊं? मैं किसके लिए युद्ध में उतर रहा था? भवितव्य का तिरस्कार करता हुआ मिथ्या आदर्शों को हृदय से लगाकर कहाँ तक दौड़ूं? पुरातन सब कुछ बिखर चुका था, नष्ट हो गया था। जो नया था वह मिल नहीं रहा था। बीहड़ मार्ग से दौड़ते हुए मेरे जीवन की अश्वनदी अब संभ्रम के निषद पर्वत से अवरुद्ध होकर क्या बीच में नहीं रुक गई थी? केवल मृत्यु पर्यंत जीने के अतिरिक्त जीवन का और कौन सा अर्थ शेष रह गया था? जो पर्वत तुल्य समस्याएं सामने आधम की थी, उनका सामना करने के लिए जिस समय आत्मनिर्भर होकर सिंह के सुधैर्य से सावधान चित्त से मुझको खड़ा होना था, ठीक उसी समय यह विचार वैविध्य मुझे जर्जरित करने लगा था। एक भी ऐसा कोई भाव दृष्टिगत नहीं हो रहा था जिससे हृदय का संघर्ष शांत हो जाता। चारों ओर केवल विचारों के संचित गड्ढे, वे ही पुरातन, वे ही स्वयं मुझे ही घृणित कर लगने वाले, सत्व का हरण करने वाले, सामर्थ्यहीन, शक्तिहीन, विक्रम शून्य, आत्मविस्मृत, आम घाती सिद्ध होने वाले। द्रौपदी की ओर अवहेलना के, पांडवों के द्वेष के, अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा के क्या करूं, कहां जाऊं? पश्चिम क्षितिज पर दृष्टि डालकर जगत को कोटि कोटि वर्षों से प्रकाश से भरने वाले मेरे ही पिता ही कम से कम मुझे यह आत्मधैर्य कदाचित दे, यह सोचकर मैंने पर्वत की ओर देखा। हस्तिनापुर का आलिंगन करने वाले उनकी तप्त किरण मुझसे स्पष्ट कह रही थी, कर्ण धैर्य मत छोड़ो, हीरा धूली में पड़कर काले अंधकार की किरणें थोड़े ही परावर्तित करेगा। तुम्हारे शरीर में मेरा जो सुप्त तेज है वह एक दिन संसार को दीप्त कर देगा। सबका नेतृत्व करते हुए तुम अभिमान से घूमोगे, साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख नतमस्तक होंगे। इसके लिए बस एक काम करो, आत्मसंभ्रम को दूर कर दो, द्विधाग्रस्त मनोस्थिति को फेंक दो। तुम्हारे एकाग्रचित होने का केवल एक ही मार्ग है, कुरुक रूप में लड़ना। द्रुत गति से पैर बढ़ाता हुआ अब मैं राजभवन की ओर लौट रहा था। उस समय मेरे मन के सभी भाव शांत हो चुके थे। मैं सूर्यपुत्र हूँ यह एक प्रतीति संपूर्ण शरीर को रोमांचित कर रही थी। संध्या घिरती आ रही थी, इसीलिए दोनों ओर घने वृक्षों के पर्ण राज्य में झिंगुर किर किर कर रहे थे। परंतु उनकी किर किर से मन अस्वस्थता का अनुभव नहीं कर रहा था। झिंगुर क्या, यदि सारा जगत भी प्रतिकूल हो जाता तो भी कोई भय नहीं था। प्रत्येक पद निक्षेप पर गत जीवन के स्थूल प्रसंगों का अर्थ समझ में आता जा रहा था। मेरा शरीर अनेक अवसरों पर तप्त क्यों हो गया था? अर्घ ध्यान के प्रति मेरे मन में आकर्षण क्यों था? अंग पर कवच कुंडल क्यों थे? संपूर्ण शरीर का वर्ण हिरण्यमय कैसा था? इन सभी रहस्यों का भेद श्री कृष्ण के मुख से जान चुका था। मेरे पैरों को दृष्टि क्यों निरखता रहता था? इंद्रप्रस्थ के राजभवन की भित्ति पर अर्थपूर्ण चित्र किसका था? राजमाता कुंती देवी ने मेरे विवाह में उपहार क्यों भेजे थे? इन सब घटनाओं की अर्थपूर्ण संगति अब बैठ रही थी। फिर भी जीवन की उस घोर प्रवंचना से भी मन के कूल अब थरथरा नहीं रहे थे, विह्वल नहीं हो रहे थे। अपितु सूर्यपुत्र होने की प्रतीति से मृत्यु को भी पैरों तले रौंद कर उसके मस्तक पर खड़े होने की दृढ़ता मन में आ गई थी। अब संभ्रम नहीं था, किंग कर्तव्यता नहीं थी, उलझन नहीं थी। एक ही मार्ग था, एक ही दिशा, महायुद्ध का सामना करना। राजभवन में आते ही 5 स्वर्ण कुंभ आनंदा त्रेक से मैंने क्रोण में भर लिए। अभ्यासानुसार स्वर्ण कहकर पुकारा, वह नहीं था। यदि वह होता तो मैंने उससे कहा होता, कवच कुंडलों के लिए तुम्हारा जो परिवार था वह मैं बहुत पहले ही दूर कर चुका हूँ। अब तो नाते के बंधन में तोड़कर मैं वास्तविक सुतपुत्र बन गया हूँ। मैं सुतपुत्र हूँ, सूर्यपुत्र हूँ, कुरु हूँ परंतु पांडव नहीं, कर्ण हूँ परंतु कौंतेय नहीं। स्वर्ण को पुकारने की आवाज़ सुनकर सेवा के लिए तत्पर विशाली भवन में आई। क्या चाहिए, उसने स्नेह से पूछा। कुछ नहीं, किसी से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। मन तृप्ति से, कृतार्थता से, धन्यता से आकंठ भरा हुआ उफन उफन करा रहा था। उस भाव वर्षा में नहाकर मैं स्वच्छ हो रहा था। एक ही घटनाई थी, घटित हुई घटना का एक अक्षर भी राधा माता विशाली सुप्रिया मेरे पुत्र किसी को भी नहीं बताया जा सकता था। असीम आनंद के क्षण ऐसे विचित्र होते हैं कि अपने लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले प्राणप्रियों को भी उनका एक कण हम दे नहीं पाते। विशाली, आज मैं जी भरकर अपूप खाना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथ के नहीं, राधा माता के। मैंने उसे अपनी इच्छा बताई। वह आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए बोली, क्यों, किस बात का आज इतना आनंद हो रहा है? तुम ही बताओ, तुम्हारा सुदामन यदि जीवित होकर अब पुनः तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो तुम्हें कितना आनंद होगा? बस उतना ही आनंद मुझे हुआ है। क्यों हुआ है यह मत पूछो। युवराज्ञी दोशला देवी ने मेरे संबंध में तुमसे जो प्रश्न पूछा था और तुम जैसे कभी नहीं बता सकी, वैसे ही इस आनंद का कारण भी मैं नहीं बता पाऊंगी। मैंने गवाक्ष से बाहर देखते हुए उससे कहा, पूर्णिमा का वही प्रकाशवान चंद्र आकाश में खड़ा था। उसके रजत प्रेम का दान लेकर गंगा माता का जल चमक रहा था। कितने अनंत काल से वह इस प्रकार चमकता आया था और भविष्य में चमकने वाला था। उसका विचार करने पर मुझे उत्तर नहीं मिल रहा था। अपूप की तैयारी करने के लिए विशाली चली गई। जाते समय इंगुदी का तेल डालकर राजभवन की सभी समाइयों को वह स्वयं जला गई थी। मेरे जीवन महल में भी उसने इसी तरह आयुष्य भर प्रेम की पवित्र समाइयाँ क्या जलाई नहीं थी? उसको आलिंगन में भरकर मैंने उससे यह कहा होता कि मैं सूर्यपुत्र हूँ तो पति के सम्मुख उसकी हीनता के प्रतीति से वह भोली भाली स्त्री का हृदय भग्न नहीं हो जाता? उसने एक साथी से प्रेम किया था, सूर्यपुत्र से नहीं। कभी कभी मौन ही महत्कार्य संपन्न कर देता है। अपूपों का आकंठ भोजन को सुप्रिया द्वारा दिया हुआ तांबूल मुख में रखते समय मन शरीर सब कितने हल्के हो गए थे। जीवन का रहस्य खुल गया था। अनेक रम्य स्मृतियों का साक्षी उत्तरीय विशाली के पास था। वह उससे मांग कर उसको देह पर लपेटता हुआ मैं चांदनी में भ्रमण के लिए राजभवन से बाहर निकला। दूर युद्धशाला की दिशा में लौह थाली पर काष्ठदंड से आघात कर रात्रि के सेवक द्वारपाल ने प्रथम पहर की घटकाओं के जो घंटे बजाए वे स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे। ज्योत्सना में निखरा हुआ रजतमय हस्तिनापुर शांत था। गजशाला में कोई हाथी अपने सुआ दांतों को भीतर के लकड़ी के खम्भों पर टकरा रहा था। उससे खटखट की ध्वनि हो रही थी। कभी कभार घोड़े फुरफुरा उठते थे और घास में से कोई कीटक के गर्दन पर चढ़ने की रौंत करती हुई गायें गर्दन को झटक देती थी, जिससे घंटों की अस्पष्ट खनखन हो उठती थी। इनके अतिरिक्त और कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। शोर ने दौड़ते हुए जाकर राजमाता कुंती देवी के रथ के नीचे आने से बचाने के लिए बिल्ली का एक बच्चा जहाँ उठाया था वह स्थान आया। आज शोर नहीं था, वह बिल्ली का बच्चा नहीं था, राजरथ भी दुर्योधन ने ध्वस्त कर दिया था। थे हम दोनों, राजमाता और मैं। वे विदुर जी के पर्णकुटी में बैठे हुए श्री कृष्ण से अपने सुख दुखों की चर्चा कर रही होंगी। गोपालों में रहने के कारण श्री कृष्ण को भात अच्छा लगता था। उन्होंने आज अपने बुआ को वही पकाने के लिए कहा होगा। विदुर जी आग्रहपूर्वक परोस रहे होंगे। सभी चित्र मेरी आंखों के सामने स्पष्ट खड़े हो गए। पर आज जिसे यह सब सुनना चाहिए था वह शोण नहीं था। उसकी कमी मुझे उत्कटता से अस्वस्थ करने लगी। राजमार्ग पर मैं आगे बढ़ने लगा। अशोक, आम्र, शाल, पीपल आदि अनेक वृक्षों ने चंद्रिका को रोककर धरती की उत्सुकता बढ़ा दी थी। कुछ झरोखों से निकली हुई गोल गोल चंद्र किरणों ने राजमार्ग पर विलोभनीय अल्पना ही चित्रित कर दी थी। उसके देखते समय वह दिन स्मरण हो आया था जब दिग्विजय से लौटने पर नगरजनों ने प्रेम की वर्षा की थी, परंतु उससे मन में कोई उत्साह नहीं जगा, जगने वाला भी नहीं था। कीर्ति, प्रतिष्ठा, गौरव, ये क्षणिक बुदबुदे अब मन नहीं मोह सकते थे। युद्धशाला आई, उसके द्वार में खड़े होते ही भीतर का वह चबूतरा दिखाई दिया जिस पर चढ़कर हाथ उठाकर मैंने सूर्यदेव को गुरु माना था। जिस चबूतरे के पास अर्जुन के और मेरे बीच एक भुजंग की कुंडली गिर पड़ी थी, जिस पर बैठकर एक रात्रि में भूसे भरे हुए पक्षी को वृक्ष से टांग कर स्वर्ण द्वारा पकड़े गए उजाले में उसकी आंखों की पुतलियां बाण से भेदी थी। अंत में नगर से बाहर आया जिस स्थान पर गुरु द्रोण ने स्पर्धा के लिए खड़ा बनवाया था। वह भव्य क्रीड़ांगण आया। क्षण भर वहां रुकने पर उस स्पर्धा के दिन की स्मृतियों के विहग मन में झांकने लगे। अनेक शस्त्रास्त्रों के वे अखाड़े, प्रवेश द्वार के बाहर तिलमिलाते हुए वह खड़ा रहना, प्रेक्षकगणों के वे हर्षोद्गार, अर्जुन का लक्ष्य भेद, तालियां, शोण का व्याकुल कथन, तमाल वृक्ष पर वह पत्र रख पक्षिणी, पैरों तले रौदी गई नीलकमलों की माला, सुतपुत्र को धिक्कारने से गुंजायमान भावशून खोखला आकाश, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु अब मन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालने में समर्थ नहीं था। ऐसे भावचित्रों की कल्पनाएं अंकित कराने के लिए मन का आंगन अभृक्त नहीं था। वहां मचा हुआ था घनघोर महायुद्ध। अर्धरात्रि के समय गंगा किनारे आया। आकाश में चंद्रमा ठीक सिर पर आ गया था। गंगा के जल में दूसरा चंद्रमा देखकर आकाश के चंद्रमा के मुख पर काला लांछन दिखाई पड़ने लगा। भरे बादल यदा कदा घेर लेते थे। एक प्रशस्त पाषाण पर बैठ गया। राधा माता द्वारा दी गई भुजदंड में बधे हुए रजत पेटिका खोलकर हौले से उसे गंगा में विसर्जित कर दिया। वह छोटी सी पेटिका जल लहरों पर हिचकोले खाते हुए प्रतिक्षण दूर होने लगी दृष्टि के पार। वह गंगा से पूछना चाहती थी, बताओ तुम्हारी जल लहरियों की संख्या अधिक है या मैंने अपने स्वामी के जीवन में जितने भाव प्रसंग देखे हैं वे अधिक हैं। हाथ उठाकर उस पेटिका को विदा कर राजभवन की ओर लौटा। शांत चित्त से अपने सूर्यवंशियों के प्राचीन भवन में निद्राधीन हो गया। 13 हाथियों के चिंगाड़ों से प्रातःकाल जागृत हुआ। उस समय गवाक्ष से जब बाहर देखा तो चारों दिशाओं में देश देश की विराट सेनाओं की पड़ी हुई छावनियां दिखाई दी। दुर्योधन की तत्परता पर आश्चर्य हुआ। पांडवों की खोज के लिए भेजे गए दूतों को सीधे अत्यावश्यक संदेश भेजकर उसने देश देश के सैनिकों को कुशलतापूर्वक अपने पक्ष में कर लिया था। मगध, मद्र, चेदी, अवंती, कुलिंद, सिंध, कलिंग और आदि बहुसंख्यक देशों के ध्वज हस्तिनापुर के चारों ओर मंडलाकृति खड़े थे। उनमें द्वारका का ध्वज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दुर्योधनों को यादवों का महत्व शायद अभी विदित नहीं था। उसका भ्रम दूर तक पहले से द्वारका भेजना चाहिए था, यह सोचकर मैं उसी अवस्था में महल से बाहर आया। अमात्य, पितामह, संजय काका, दुशासन, मामा, जयद्रथ सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त दिखाई दिए। दुर्योधन ने सबको कुरुओं के अन्न पर पलने का भावपूर्ण आह्वान किया था। राजनिष्ठा से प्रेरित हुए वे महान योद्धा अपने अपने सेनापथकों की देखभाल कर रहे थे। कोई भी टाल मटोल नहीं कर रहा था, कोई भी भयग्रस्त दिखाई नहीं दे रहा था। दुर्योधन, महायुद्ध की तैयारी पूर्ण करते समय तुमने यादवों को क्यों भुला दिया? देश देश से आए हुए सैनिकों के लिए अन्न संपूर्ति के संबंध में दुशासन को आदेश देते हुए दुर्योधन से मैंने पूछा। नहीं कर्ण, मैं उस श्री कृष्ण के पास कदापि नहीं जाऊंगा, वतन कर खड़ा होता हुआ बोला। अब तुम्हारी इच्छा का प्रश्न नहीं है, हस्तिनापुर के चारों ओर एकत्रित विशाल सेना का प्रश्न है। यह तुमको द्वारका जाना ही पड़ेगा, दुर्योधन के रूप में नहीं, इस महायुद्ध के नियोजक के रूप में। कर्ण, यह वह तुम्हारी मैं एक बात भी नहीं सुनूंगा। इस युद्ध के लिए यदि तुम्हें मेरी आवश्यकता है तो तुम्हें द्वारका जाकर श्री कृष्ण को अपने पक्ष में अवश्य मिलाना होगा। ध्यान रखो, श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना है, न कि उनकी साथ अक्षौणी विशाल सेना को। कर्ण, श्री कृष्ण अपने पक्ष में आ जाएगा, इसकी अब भी तुम आशा कर रहे हो? वह भावे तानता हुआ बोला। हाँ, तुम यदि उनके सामने एकदम नतमस्तक हो जाओ तो, यदि उनसे क्षमा मांग लो तो, मुझे श्री कृष्ण की उदारता पर विश्वास था। असंभव है, वह नहीं आएगा, यह कहकर मैं तुम्हें भ्रम में नहीं डालना चाहता हूँ, परंतु मुझे विश्वास है कि यदि मैं उसके चरणों पर अपना मस्तक भी रख दूँ फिर भी वह नहीं आएगा, और मैं मस्तक कभी रखने वाला भी नहीं। तो फिर एक काम तो करो ही, उनसे कहो कि तटस्थ रहें, द्वारका में ही वही एक मार्ग शेष था। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं द्वारका जाऊँगा, श्री कृष्ण के पक्ष में करने का प्रयत्न भी करूँगा। तुम पितामह, अश्वत्थामा आदि युद्धभूमि तैयार करवा लो। पितामह से पूछकर युद्ध के नियम निश्चित कर लो। शस्त्र, शस्त्र, रथ, लौत्राण, ध्वज, रणवाद्य सभी तैयार रखो। आए हुए सभी सैनिकों को धन धान्य और सोमरस की संपूर्ति नित्य नियम से सावधानीपूर्वक करते रहो। अपने सारथी प्रतिकामन को द्वारका भेज जाने के लिए उसने तत्काल रथ जोतने की आज्ञा दी। मैंने मुक्ति की सांस ली। यदि वह श्री कृष्ण को तटस्थ ही कर सके तब भी पर्याप्त था। केवल श्री कृष्ण सहायता कर रहे थे इसलिए पांडव वीर माने जा रहे थे, नहीं तो वे वास्तव में समर्थों के राज्य के भिक्षुक थे। 14 हस्तिनापुर में युद्ध की तैयारी हो रही थी। दुर्योधन द्वारका चला गया था, इसलिए शस्त्र, शस्त्र, युद्धभूमि, गजदल, अश्वसेना आदि की देखभाल मुझे ही करनी पड़ रही थी। सहायता के लिए सदा तत्पर रहने वाला शोण साथ नहीं था। दुर्योधन के आग्रह पर उसके स्थान की पूर्ति अश्वत्थामा ने कर दी थी। वह मेरे साथ घूम रहा था, एक आश्रमवासी के रूप में नहीं, तत्वज्ञानी के रूप में नहीं, एक योद्धा के रूप में, राजनिष्ठ योद्धा के रूप में। मल्लपथक आगत सेना की व्यवस्था, उनका संचालन आदि बातों को दुशासन स्वयं देख रहा था। युद्ध में भाग लेने वाले राजाओं को चातुर्यपूर्ण पत्र भेजकर शकुनी मामा उनको अपने पक्ष में करने में तल्लीन हो गए थे। महाबाढ़ में सभी नदियों का जल प्रवाह वायु की गति से जैसे सागर की ओर ही दौड़ता है, वैसे ही हस्तिनापुर के आसपास के राजा चतुरंग दल सेना के साथ हस्तिनापुर पहुंच रहे थे। गंगा के विशाल किनारों पर सैनिकों की असंख्य छावनियां बन रही थी। बाण, भाले, खड्ग, त्रिशूल आदि के लक्ष्य लक्ष्य फलक तैयार करने में लगे हुए लौहकार घनाघातों से लौहशाला गुंजाने लगे, स्फुलिंग उड़ने लगे। घोड़ों की पीठ पर पर्याय चढ़ाकर उनके मुख में वलगाएं लगाते हुए अश्वपाल शांत होने लगे। पाकशाला में हड़ियों में अन्न पकाते हुए पाकशाला के पालकों को निद्रा लेने के लिए भी समय नहीं मिल रहा था। क्षतिग्रस्त रथों को पुनः ठीक कराने वाले रथकार उपकरण पहना कर मधुमक्खियों की तरह अविरत परिश्रम कर रहे थे। अधिष्ठान में कूटी गई सोमवल्ली का छूछा मध्यशाला के आसपास इतना इकट्ठा हो गया था कि दूर से उसकी भीते भी पहचान में नहीं आती थी। शिविर बनाने के लिए आवश्यक पटल बुनते बुनते बुनकरों की आंखों में जाले पड़ने लगे थे। सुरक्षित रखा हुआ कुरुओं का त्रिकोणी राजध्वज निकालकर उन्होंने उसके त्रिकोणी किनारे पर बहुमूल्य नीले रेशमी धागों की जाली बुनकर मध्य भाग में सुनहले धागों से सूर्य प्रतिमा बुनी। विशाल ढाल के समान आकार वाले उस मानध्वज को महामंत्री विदुर ने अपने हाथों से पितामह भीष्म को सौंप दिया। युद्ध हमारी विचारधारा के अनुकूल कभी नहीं हो सकता, यह कहने वाले महामंत्री विदुर किसी की भी प्रार्थना पर ध्यान न देकर युद्ध से पूर्व ही हिमालय पर चले जाएंगे, यह बात आरक्षित छावनी में निश्चयपूर्वक कही जा रही थी। जाने से पहले राजमाता कुंती देवी को वो उपलब्ध पहुंचाएंगे, यह बात भी प्रबंधन द्वारा मुझे ज्ञात हो गई थी। आयुधों के सम्मार्जन के समय होने वाली घस घस और घोड़ों के खुरों के टप टप का संकेत छिड़ा हुआ था। सर्वत्र युद्ध की तैयारी हो रही थी, समग्र हस्तिनापुर को घेरे हुए थे। उसके प्रत्येक संग्राम यात्री को स्वर्ग का कोई न कोई महाद्वार अपने पुष्ट भुजाओं से खटखटाना था। शस्त्र पर शस्त्र रचित कर उस दिव्य सोपान से स्वर्गलोक के साम्राज्य में मत होकर प्रवेश करना था। कल के भयंकर काल की यही न्याय निष्ठुर मांग थी। उसको पूर्ण करने के लिए एकत्रित होने वाले आत्मनिर्भर और बलवान लक्ष्य लक्ष्य सैनिक राजनगर के सभी राजनगरों पर उन्नत वक्ष घूमते हुए मुझे राजभवन के सौंध पर से प्रतिदिन स्पष्ट दिखाई देने लगे। आ मिलने वाले नवीन सैनिक पथकों के असंख्य हाथी और घोड़ों के द्वारा मथित होने के कारण गंगा का साधारण हिम जैसा दिखाई देने वाला श्वेत शुभ्र जल प्रतिदिन अधिकाधिक गंदला हो रहा था। आयुधागार के लाखों आयुध बाहर निकालकर सम्मार्जित कर दिए गए थे। युद्ध भूमि के चारों ओर समरांगण की कक्षा दिखाने वाले असंख्य छोटे छोटे श्वेत चिन्ह अंकित कर दिए गए थे। देश देश के विविध वर्णों के विविध आकारों के छोटे बड़े शंख शंखागार में लकड़ी के आसनों पर सजा दिए गए थे। नगर के धाम धाम में शयन गृहों में पत्थर की समाइयाँ अर्धरात्रि तक जलने लगी, पहले इतनी देर तक कभी नहीं जलती थी। महाराज हस्ती के बसाए हुए राजनगर के जीवन क्रम में घोर संकट आ गया था। मार्ग शीर्ष के कोहरे के घने बादल राजभवन के प्राचीर के चारों ओर घने भूत होने लगे। महायुद्ध, मेरे जीवन में यह तीसरा महायुद्ध था। पहला वह जब पांचाली के स्वयंवर में अनेक राजाओं ने मिलकर कापिले नगर में किया था। दूसरा जिस समय राजा दुर्योधन ने महारानी भानुमति का हरण किया था, उस समय भी मुझे लड़ना पड़ा था। इन दोनों महायुद्धों में अनेक देशों के राजा थे, अब यह तीसरा महायुद्ध था। पहले दोनों महायुद्ध हमारे देश से बहुत दूर दूसरे खंड में हुए थे, इसकी प्रत्यक्ष लपट हम कुरुओं तक नहीं पहुंची थी, परंतु यह तीसरा महायुद्ध अब किसी क्षेत्र में नहीं, वह हमारे देश के समीप ही आधम का था, बिल्कुल हस्तिनापुर के पास कुरुक्षेत्र में। इस समय समस्त अंत संघर्षों को मिटाकर जिनसे जो कुछ सहायता प्राप्त हो सके वह लेकर खड़ा होना ही क्या बुद्धिमत्ता नहीं थी। मेरा मन इस निश्चय के निर्णय पर आकर ठहर रहा था। किसी भी कारण अब वह विचलित नहीं होने वाला नहीं था। परिस्थिति का आह्वान स्वीकार कर मैं सज्जित हुआ था, अन्यों को धैर्य बधा रहा था। पहले कुरुओं के साम्राज्य का वृक्ष दृढ़ता से धरती में जड़े जमाकर सीधा तन कर खड़ा हुआ रहना चाहिए, तभी उस पर कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, महाराज धृतराष्ट्र, पितामह सबके नीड़ सुरक्षित रह सकते थे। पहले देश और राष्ट्र, तदुपरांत व्यक्ति और उनकी चिंता। सहस्त्र कुरु हाथों में हाथ डालकर एक मन से जब युद्ध करेंगे तो हिमालय की क्या, उसके भी परे भी जो दुर्लभ्य होगा, अजय होगा, उसे भी सहज ही हम पदाक्रांत कर देंगे। दूतों के द्वारा पांडवों के विचार विनिमय कर पितामह ने युद्ध के नियम निश्चित कर दिए। अश्वत्थामा और दुशासन अपने परस्पर भिन्न स्वभाव भूलकर उन नियमों को सहस्त्र सहस्त्र योद्धाओं के सैनिकों को दलों को समझाकर बता रहे थे। एक बार प्रयुक्त कर धरती पर पड़े हुए शस्त्र को पुनः हाथ में लेकर प्रयुक्त मत करो। निशस्त्र शरणागत विरथ मृत इन पर शस्त्र मत उठाओ। प्रेत दहन करने वालों, सोमरस की पूर्ति करने वालों, अन्न पकाने वालों, इनका वध मत करो। पदाति पदाति से अश्व साध, अश्वसाध से गजाति, गजाति से गदाधर, गदाधर से खड्गधारक, खड्गधारक से रथी, रथी से। इस प्रकार नियमबद्ध रूप से प्रत्येक संग्राम करें। सूर्यास्त होते ही संग शस्त्र छोड़ने की भूल मत करो। यदि अनेक प्रकार की सूचनाएं वे सैनिकों को दे रहे थे, वे भूल न कर दे इसलिए उनसे प्रत्यक्ष करवाकर देख रहे थे। ऐन मार्गशीर्ष में कड़ाके की ठंड पर भी राजनगर का वातावरण तप्त हो गया था। पांडवों की ओर से पांचाली का भाई धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि का सीमांकन करने के लिए ही कुरुक्षेत्र पहुंचा। पितामह भी हस्तिनापुर से गए। गज अश्व पदाति और रथ दल के स्थान निश्चित करवाकर हस्तिनापुर में पल भर भी न रुक कर जाते जाते विदुर जी की पर्णकुटी में राजमाता से मिलकर धृष्टद्युम्न सीधा उपलाभ्य चला गया। चिन्हांकित युद्ध भूमि को देखकर आया वह सत्यसेन चिंतित होकर कह रहा था कि दक्षिण दिशा की ओर वह उतरती चली गई है। उसकी सत्यता की परीक्षा करने के लिए मैं स्वयं समरांगण देखने गया। उसका कथन सत्य था। कितना भी भराव किया जाता फिर भी युद्ध भूमि के दक्षिण की ओर कोई उतार को समतल करना संभव नहीं था, क्योंकि उसका क्षेत्र अति विशाल था। युद्ध भूमि की बात अलग रही, परंतु मेरे जीवन का उतार अब कैसे समतल हो सकता था। मार्गशीर्ष की पंचमी पीछे छूट गई। कड़ाके की ठंड थोड़ी कम हो गई। द्वारका से लौटा हुआ दुर्योधन अब नगर में प्रवेश कर रहा था। तब मैं सौंध पर उत्सुक होकर उसके रथ में श्री कृष्ण को देखने के का प्रयत्न करने लगा। उसके पीछे पीछे यादवों की विशाल सात औक्षहिणी सेना नगर में घुसी, परंतु श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए। हो सकता है कि राजा ने उनको तटस्थ रखने में सफलता प्राप्त कर ली हो। इतना चतुर तो वह है ही, यह सोचकर आगे बढ़कर मैंने उसका स्वागत किया। परंतु वह आधा सफल नहीं जी, सफल कैसा, पूर्ण विफल होकर द्वारिका से लौटा था। उसकी राजनीतिक धूर्तता को भी श्रीकृष्ण ने परास्त कर दिया था। एक ओर निशस्त्र मैं हूँ, दूसरी ओर सशस्त्र बलवान सैनिक योद्धाओं के साथ अक्षौहिणी यादव सेना है। इनमें से कौन चाहिए तुम्हें? यह विचित्र भ्रामक प्रश्न उन्होंने दुर्योधन के सामने रखा था। मेरी समस्त सूचनाएं भूलकर दुर्योधन ने यादव सेना की ही मांग कर ली थी। मैं केवल तुम्हें ही चाहता हूँ, भले ही तुम निःशस्त्र रहो, बद्धहस्त रहो या अबोल रहो। यदि तुम न आना चाहते हो तो द्वारिका में चुपचाप बैठे रहो। मुझे तुम्हारी यादव सेना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण को बद्ध करने वाली ऐसी कोई बात उसने नहीं कही थी। इसके विपरीत 1,500,000 यादव सेना हस्तिनापुर की ओर उन्मुख करने में राजनीतिक दृष्टि से हम कितने सफल हो गए हैं, यह बताने के लिए वह दौड़ता हुआ सा आकर बोला। कर्ण निःशस्त्र श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर लगा हुआ ध्वज दंड, इनमें अंतर ही क्या है? वह अर्जुन का सारथ्य करेगा, शस्त्र के स्थान पर हाथ में बलगाएं और प्रतिरोध लेगा। अपने यहाँ सारथी क्या कम है? उसको लाने की अपेक्षा उसकी 1,500,000 सेना लाकर मैंने कुरुओं के सैन्य सामर्थ्य को सशक्त बनाया है, ऐसा क्या नहीं लगता तुम्हें? राजन, युद्ध में बुद्धि नामक अस्त्र सबसे अधिक प्रभावशाली होता, क्या तुम यह नहीं जानते? अर्जुन के रथ का सारथ्य करने वाले श्री कृष्ण घोड़ों की बलगाई खींचेंगे, परंतु जीवा को ढीली छोड़ देंगे, यह बात तुम्हारी समझ में कैसे नहीं आई? कम से कम उनको चुप रहकर सारथ्य करने की शर्त ही तुम लगा आते तो अच्छा था। यह बात उस राजनीतिक कुशल कहे जाने वाले नरेश से मैं कहना चाहता था, परंतु फिर मैं चुप रहा। भूल स्वीकार करना, उनको सुधारने का प्रयत्न करना, सबको विश्वस्त बनाना, ये गुण हस्तिनापुर जैसे बलाढ्य देश का नेतृत्व करने वाले इस राजा के जीवन में अब कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते थे। स्वयं आमंत्रित किया हुआ युद्ध, आसपास गिरी हुई ज्वलन समस्याएं, पितामह और गुरुद्रोण जैसे वृद्धत्व से निष्प्रभ हुए कुरुओं के हाथ में दीर्घकालीन राज सूत्रों का होना, संकट के समय जो ऐक्य भावना आवश्यक होती उसका अभाव, इन समस्त अवरोधों से दूरदृष्टि का मार्ग कहीं प्राप्त नहीं हो रहा था। धीवर के जाल में फंसे हुए कीट की तरह वह जितना प्रयत्न कर रहा था उतना ही अधिक उलझता जा रहा था। मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था, वह और उसका चुना हुआ राजनीति का मार्ग। अब सब कुछ एक बड़ी वंचना सी लगती थी। आशा की एक किरण के लिए मैं छटपटा रहा था। इतने पर भी मैं अकेला ही सामर्थ्यशाली हूँ, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। हस्तिनापुर के प्राचीन राज्य को चलाने का बुद्धि कौशल एकमात्र मुझ में ही है। इस विचित्र अहम भावना से दुर्योधन इतना घनीभूत था कि वह किसी पर भी विचार करने को तैयार नहीं था। मेरे सुझाव, मेरे परामर्श मुझसे अत्यंत स्नेह करने वाले प्राण प्रिय मित्र के परामर्श है, यह भी उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं था। श्री कृष्ण को छोड़कर वह यादव सेना ले आया था। कुल सैन्य संख्या 11 अक्षौहिणी के ऊपर चली गई थी। सेनापति का चुनाव कर उसके नेतृत्व में सेना पथकों की योजना करने का समय आ गया था। एक एक पथक हस्तिनापुर छोड़कर युद्ध भूमि की ओर मार्गस्थ हो गया था। कुरुक्षेत्र की दक्षिण दिशा में सैनिकों के शिविर बने हुए थे। राजनगर सुनसान लग रहा था। सैनिकों के प्रयाण की अनुज्ञा देते हुए स्त्रियां देहरी पर छिड़काव कर गृह गृह में अपने कुल देवता की आरती उतारती हुई अक्षय दीप जला रही थी। पथकों की व्यवस्था देखने के लिए मैं भी हस्तिनापुर छोड़ दिया। राजनगर का समस्त यातायात कुरुक्षेत्र के आसपास व्याप्त हो गया था। जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते से सटकर एक दूसरी से पंख भिड़ाकर चिपटी रहती हैं, वैसे ही लक्ष लक्ष सैनिक कुरुक्षेत्र के समरांगण की पश्चिम भूमि में छाए हुए थे। अंग अंगारक, अलब्ध, अम्बष्टक, अलायुध, अलम्बसु, आश्यरिंगी, ये राक्षस राज अपने विशाल सज्जित शरीर लिए हुए गजदल के सहस्त्रों गजों को अंकित भूमि में खड़े हुए अग्रभाग मग्न हो गए थे। अनश्वस, अनुशाल्व, अपराजित, अचल, अरिष्टसेन, बिंद, अनुबिंद, अंगद, अच्युतायु, अशोक, अश्वकेतु, आषाढ़, आर्जव, इंद्रवर्मन, ईश्वर, उग्रतीर्थ, उग्रमन्यु, उलूक आदि निष्णात अश्वतत्वज्ञ अश्वसाधों को सूचना देकर अश्वदलों को एक एक पंक्ति में खड़े करने में स्वयं को भूल गए थे। क्षेम धूर्ति, क्षेम शर्मन, भगदत्त, कृतवर्मा, बृहदबल, वहलीक, नीलध्वज, चिरवासव, दीर्घ प्रज्ञ, नियुतायु, पौंड्रक, दीर्घायु, ये विख्यात रथ सम्राट अपने अपने रथियों को उनके नियुक्त स्थान दिखा रहे थे। गुरुद्रोण, कृप, शल्य, शकुनिमामा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, ये सभी जन महाबाढ़ भरी गंगा जैसी 24 लाख सेना का अनुशासन देख रहे थे। मगध, मद्र, वाहली, गांधार, अवंती, निषद, सिंध, कलिंग, चेदी आदि सभी देशों के विविध आकारों के विविध वर्णों के राजध्वज फहर आ रहे थे। कुरुक्षेत्र का चक्कर लगाकर बहने वाली सरस्वती का तथा मंद निषदवती का जल दिन में भी थरथरा रहा था। सेना के शिविर व्यवस्थित ढंग से लग चुके थे, यह पता चलते ही मैं राजनगर की ओर लौटा। उपलाभ से मार्गशीर्ष माह के कृष्णा द्वितीया का दिन नियुक्त किया गया।